अनिवार्य ओपनिंग नरेशन। एकत्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्रा एआई की मदद से तैयार किया गया है।
स्वागत है। आज हम एक बहुत ही अनोखे उपन्यास पर बात करने वाले हैं, ऐसा उपन्यास जो शायद आपको थोड़ा बेचैन कर दे, सोचने पर मजबूर करे।
हाँ बिल्कुल।
फ्लैनरी ओ'कॉनर का पहला नॉवल वाइज ब्लड 1952 में पब्लिश हुआ था।
फ्लैनरी ओ'कॉनर 20वीं सदी की अमेरिकी लेखिका, और उनके आवाज मतलब बहुत खास है। जॉर्जिया में पली बढ़ी, कैथोलिक थीं, वो भी उस इलाके में जहाँ ज्यादातर प्रोटेस्टेंट थे।
हाँ, सदर्न अमेरिका में।
बिल्कुल, तो उनकी कहानियों में वो दक्षिण का एक खास रंग दिखता है जिसे सदर्न गॉथिक कहते हैं। थोड़े अजीब कह सकते हैं, विलक्षण किरदार, बेचैन करने वाले हालात
और गहराई में छिपे नैतिक सवाल।
सही कहा। और दुख की बात है कि लूपस बीमारी की वजह से वो सिर्फ 39 साल की उम्र में ही चल बसी।
गॉथिक लिखते थे, लेकिन ओ'कॉनर का जो कैथोलिक नजरिया है,
हाँ, वो इसे एकदम अलग बना देता है।
बिल्कुल, उनके लिखने में एक अजीब सा खालमेल है। कहीं बहुत क्रूरता दिखेगी तो कहीं गहरी हमदर्दी, कहीं हंसाने वाली बेतुकी बातें तो कहीं एकदम रुला देने वाली ट्रेजेडी।
और वो अक्सर दिखाती हैं कि कैसे लोग मतलब आध्यात्मिक तौर पर अंधे हो जाते हैं, कैसे ग्रेस यानी ईश्वर की कृपा कभी कभी बहुत हिंसक रूप में आती है।
हाँ, और कैसे दुख और तकलीफ से गुजरकर ही शायद मुक्ति का रास्ता मिलता है।
उनकी छोटी कहानियां भी बहुत जबरदस्त है, जैसे अ गुड मैन इज हार्ड टू फाइंड। वही तीखापन, वही गहरे सवाल उनमें भी मिलते हैं।
बिल्कुल, और वाइज ब्लड उनका पहला उपन्यास, इसी ने जैसे उनके पूरे लिखने के सफर की नींव रखी। जो खास मुद्दे, जो स्टाइल उनकी पहचान बने, वो सब इसमें मौजूद हैं।
हाँ, ये उपन्यास अमेरिकी साहित्य में धर्म, आस्था, शक और आज की दुनिया में अर्थ की तलाश, इन सब पर एक बहुत ही पेचीदा और यादगार पड़ताल है।
तो आज हम इसी उपन्यास की कहानी को समझेंगे, इसके किरदारों की उधेड़बुन, खासकर हेजल मॉट्स की, आस्था और अनास्था की वो रस्साकशी, और ओ'कॉनर के वो अनोखे थीम्स।
तो कहानी हमें ले जाती है टेनेसी के एक काल्पनिक शहर टॉल्किनहैम। ये शहर एक तरह से युद्ध के बाद के अमेरिका का प्रतीक है। लोग दिशाहीन हैं, पुरानी मान्यताएं टूट रही हैं, एक आध्यात्मिक सूखापन सा है।
और कहानी का जो सेंट्रल आइडिया है वो अपने आप में बड़ा अजीब और विरोधाभासी है ना?
हाँ बिल्कुल, एक ऐसा चर्च जिसमें मसीही न हो,
सोचकर ही अजीब लगता है।
और यही विरोधाभास हमें खींच लेता है हेजल मॉट्स की कहानी में। हेजल 22 साल का लड़का लड़ाई से लौटा है, और बचपन में उसे जिस कट्टर धार्मिक माहौल में पाला गया वो उससे पूरी तरह भागना चाहता है।
उसका इरादा पक्का है, वो अपना खुद का चर्च बनाएगा, चर्च विदाउट क्राइस्ट।
हाँ, बिना मसीह वाला चर्च। कहानी शुरू होती है जब हेजल अपने पुराने वीरान घर लौटता है, परिवार गायब है। फिर वो टॉल्किनहैम आता है, शायद सोचता है कि शहर की भीड़ में गुम हो जाएगा, अतीत से बच निकलेगा।
यही तो ओ'कॉनर का कमाल दिखता है। हेजल जितना धर्म से भागने की कोशिश करता है ना, उतना ही उसमें उलझता जाता है।
बिल्कुल,
उसका वो चर्च विदाउट क्राइस्ट एक तरफ तो विद्रोह है उसके बचपन के खिलाफ, लेकिन दूसरी तरफ अनजाने में ही वो उसी मसीह के इर्द गिर्द घूमता रहता है जिसे वो नकार रहा है।
सही कहा। ये उपन्यास बहुत गहरे सवाल खड़े करता है। क्या सच में ईश्वर को पूरी तरह नकारा जा सकता है? क्या हम अपनी जड़ों से कट सकते हैं? आस्था आखिर है क्या?
और हेजल इस अजीब दुनिया में अकेला नहीं है। कहानी में और भी कई बड़े दिलचस्प, बल्कि कहूं तो काफी अजीब किरदार हैं।
हाँ बिल्कुल। एक है एनोक एमरी, अकेला बेचैन सा लड़का। हेजल को देखकर उसे लगता है कि उसे कोई खास मकसद मिल गया है। फिर है आसा हॉक्स, जो अंधा होने का नाटक करता है, एक धोखेबाज उपदेशक।
और उसकी बेटी साबिथ लिली हॉक्स।
हाँ साबिथ, एक किशोरी जिसमें मासूमियत कम और शिकारीपन ज्यादा है। वो हेजल के पीछे पड़ जाती है। और एक और है हूवर शॉट्स,
वो मौका परस्त ठग
जी, जो हेजल के मसीह विरोधी विचारों में भी बिजनेस का मौका देखता है।
किरदारों की पूरी मंडली ही अजीब है। चलिए हेजल मॉट से ही शुरू करते हैं। वो सिर्फ बागी नहीं है, उसमें कई परतें हैं। वो जैसे आस्था और अनास्था के बीच फंसा हुआ है।
सही कहा। हेजल मॉट्स या हेज, कहानी का नायक, उसे पाला था उसके दादा ने, जो बड़े डरावने उपदेशक थे, नरक की आग का डर दिखाते थे। फिर लड़ाई के अनुभव ने उसे और तोड़ दिया।
तो अब उसका मकसद क्या है?
अब उसकी जिंदगी का जैसे एक ही मकसद है, ये साबित करना कि मसीह जैसी कोई चीज नहीं होती, उद्धार या मोक्ष की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन उसके इनकार में, उसके गुस्से में भी कहीं ना कहीं एक गहरी आध्यात्मिक प्यास या छटपटाहट झलकती है।
वो जितना इनकार करता है उतना ही लगता है कि वो किसी चीज से जूझ रहा है अंदर ही अंदर।
बिल्कुल।
उसकी ये यात्रा फिर कैसे आगे बढ़ती है, उसका ये चर्च विदाउट क्राइस्ट का विचार कैसे शक्ल लेता है दुनिया में?
देखिए, शुरुआत में तो वो बहुत गुस्से में है। दुनिया के हर नियम, हर नैतिकता से आजाद होना चाहता है। वो एक पुरानी खटारा सी एसेक्स कार खरीदता है। ये कार जैसे उसकी आजादी का, उसके भागने का प्रतीक बन जाती है, और उसके अजीब से चर्च का भी।
उसी कार से वो प्रचार करता है।
हाँ, कार के बॉनेट पर खड़े होकर अपने चर्च विदाउट क्राइस्ट का प्रचार करता है। वो लियोरा वॉट्स नाम की एक वेश्या के पास भी जाता है, शायद सोचता है कि शारीरिक संबंध उसे उस खालीपन से भर देंगे, पर ऐसा होता नहीं।
और उसका सामना ढोंगी धर्मगुरुओं से भी होता है।
हाँ, आसा हॉक्स जैसे लोगों से, जिससे धर्म के प्रति उसकी नफरत और पक्की हो जाती है।
लेकिन फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है ना? उसका ये विद्रोह एक बहुत ही भयानक दिशा ले लेता है।
हाँ, वो हिस्सा तो झिंझोड़ कर रख देता है, जब एक पुलिस वाला बिना किसी खास वजह के उसकी वो प्यारी खटारा कार, जो उसके लिए सब कुछ थी, खाई में धकेल देता है, तो हेजल जैसे टूट जाता है।
उसकी आजादी का वो प्रतीक छिन जाता है।
बिल्कुल। और इसके बाद वो जो करता है वो बहुत खौफनाक है। वो चूने से अपनी आंखें फोड़ लेता है, खुद को अंधा कर लेता है, अपनी छाती पर कंटीले तार लपेट लेता है, अपने जूतों में कंकड़ पत्थर भरकर चलता है। ये पढ़ते हुए सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
ये समझना मुश्किल है, वो तो ईश्वर को नकार रहा था, फिर खुद को इतनी भयानक तकलीफ क्यों?
शायद यही ओ'कॉनर का इशारा है कि उसका इनकार शायद सच्चा था ही नहीं, या शायद वो जिस चीज से भाग रहा था उसी की गिरफ्त में आ गया था। उसका खुद को अंधा करना आसा हॉक्स के झूठे अंधेपन के बिल्कुल उलट एक तरह का भयानक लेकिन शायद सच्चा कबूलनामा बन जाता है।
जैसे वो कह रहा हो कि दुनिया को देखने से बेहतर है अंधा हो जाना।
हाँ, कुछ ऐसा ही। उसका विद्रोह अब एक विकृत किस्म की तपस्या में बदल गया है, लेकिन वो पखंडी नहीं था। शायद यही उसकी त्रासदी भी है और खूबी भी।
हेजल का ये सफर वाकई अमेरिकी साहित्य में आध्यात्मिक संकट का एक बहुत ही शक्तिशाली चित्रण है। उसकी ईमानदारी डरावनी है और उसका अंत एक अजीब सी पवित्रता की तरफ इशारा करता है, रास्ता भले ही भयानक हो।
बिल्कुल।
अच्छा, अब जरा एनोक एमरी की बात करें। वो कहानी में एक अजीब सा ह्यूमर और डार्कनेस दोनों लाता है।
एनोक एमरी 18 साल का लड़का, वो मानता है कि उसके खून में कुछ खास है, जिसे वो वाइज ब्लड कहता है, समझदार खून, जो उसे अपने बाप से मिला है।
और ये वाइज ब्लड उसे क्या करने पर मजबूर करता है?
ये उसे अजीबोगरीब काम करने पर उकसाता है। वो बहुत अकेला है, लोगों से जुड़ नहीं पाता। वो भी शायद हेजल की तरह जिंदगी में कोई मतलब ढूंढ रहा है, पर उसका तरीका बहुत बचकाना है, लगभग जानवरों जैसा, हेजल की तरह दिमागी नहीं।
उसकी ये खोज उसे कहाँ ले जाती है?
वो शहर के चिड़ियाघर में काम करता है और फिर एक म्यूजियम में रखी एक सदियों पुरानी सूखी हुई मम्मी, उसको देखकर जैसे पागल सा हो जाता है।
मम्मी?
हाँ, उसे लगता है कि ये मम्मी हेजल के चर्च विदाउट क्राइस्ट के लिए एकदम सही नया जीसस है। वो हेजल से दोस्ती करना चाहता है, उसकी नज़र में ऊपर उठना चाहता है, लेकिन उसकी हरकतें इतनी अजीब हैं कि वो और अकेला होता जाता है।
और उसका अंत क्या होता है? क्या उसे कोई मतलब मिल पाता है?
उसका अंत भी उतना ही अजीब। वो म्यूजियम से वो मम्मी चुरा लेता है, सोचता है हेजल को देगा, लेकिन हेजल उसे भगा देता है। फिर वो सड़क पर गोरिल्ला का सूट पहने एक आदमी को देखता है, उस पर हमला करके वो सूट छीन लेता है।
सूट छीन लेता है?
हाँ, और खुद पहनकर लोगों को डराने लगता है। ये जैसे उसका इंसानियत से पूरी तरह मुंह मोड़ लेना है, अपने अंदर के जानवर को अपना लेना। ओ'कॉनर के लिए शायद ये उस आधुनिक इंसान का प्रतीक है, जिसके पास आत्मा नहीं बची, जो सिर्फ अपनी सहज इच्छाओं का गुलाम है, एक खाली दयनीय हालत।
एनोक की कहानी भी आधुनिक दुनिया में अर्थ की तलाश के भटकाओं का एक दुखद और थोड़ा डरावना नज़ारा पेश करती है।
अच्छा, अब आसा हॉक्स और उसकी बेटी साबित लिली पर आते हैं। ये दोनों जैसे संगठित धर्म के बिगड़े हुए रूप को दिखाते हैं।
हाँ।
आसा हॉक्स तो धर्म के नाम पर धोखाधड़ी का जीता जागता सबूत है। वो दावा करता है कि उसने ईश्वर के लिए, मतलब धार्मिक जोश में, अपनी आंखें फोड़ ली, लेकिन सब नाटक है।
वो अंधा होने का नाटक करता है।
जी हाँ, वो अपनी झूठी अंधता का इस्तेमाल लोगों से पैसे ऐंठने और हमदर्दी बटोरने के लिए करता है। उसका ये ढोंग हेजल के उस भयानक लेकिन सच्चे आध्यात्मिक संघर्ष के सामने कितना खोखला लगता है। वो दिखाता है कि कैसे धर्म को भी एक तमाशा बनाया जा सकता है
और उसके इस धोखे का पर्दाफाश भी होता है।
हाँ, कहानी में पता चलता है कि उसने कभी खुद को अंधा करने की हिम्मत ही नहीं जुटाई। यही तो ओ'कॉनर की विडंबना है हेजल, जो ईश्वर को नकारता है आखिर में खुद को अंधा कर लेता है,
जबकि हॉक्स जो आस्था का ढोंग करता है उसमें अपने दावे पर टिके रहने का साहस भी नहीं है।
ये दिखाता है कि सिर्फ बातें करने और सच में कुछ करने में कितना फर्क है।
बिल्कुल।
और उसकी बेटी सैबिथ लिली,
वो भी कोई सीधी साधी लड़की नहीं लगती।
सैबिथ लिली हॉक्स, उम्र 15 साल, लेकिन उसमें एक अजीब सी चालाकी है, एक शिकारीपन है। वो नैतिकता वगैरह से परे है, बस अपनी इच्छाएं पूरी करना जानती है।
वो हेजल के पीछे पड़ जाती है।
हाँ, उसे लुभाने की कोशिश करती है। उसका किरदार जैसे दिखाता है कि कैसे मासूमियत भी भ्रष्ट हो सकती है, कैसे वासना को भी बेचा जा सकता है, और कैसे आध्यात्मिक संकट के बीच भी इंसानी इच्छाएं कितनी हावी रहती हैं। वो खुद को ऐसे दिखाती है जैसे वो कोई गिरी हुई औरत है जिसे हेजल के ईश्वर विहीन उद्धार की जरूरत है।
उसका क्या बनता है आखिर में?
उसका अंत भी बड़ा विभत्स है। जब एनोक वो चुराई हुई मम्मी लाता है ना, तो सैबिथ उसे ऐसे पालने लगती जैसे वो उसका और हेजल का बच्चा हो।
क्या?
हाँ, ये मातृत्व का, घर बसाने की इच्छा का एक बहुत ही भयानक मजाक है। उस दुनिया की आध्यात्मिक और भावनात्मक कंगाली को दिखाता है।
ये सब किरदार तो एक से बढ़कर एक है।
और
फिर वो हूवर शॉर्ट्स भी है, वो जो धर्म को धंधा बनाने वालों का प्रतीक है।
हूवर शॉर्ट्स, जो बाद में अपना नाम ओनी जे होली रख लेता है, एक रेडियो पर प्रवचन देने वाला ठग, वो हेजल के अजीब विचारों में भी बिजनेस का मौका देख लेता है।
उसका मकसद सिर्फ पैसा है।
बिल्कुल, सिर्फ पैसा। जब हेजल उसके साथ काम करने से मना कर देता है, तो शॉर्ट्स हेजल के चर्च विदाउट क्राइस्ट के नाम को थोड़ा बदलकर द होली चर्च ऑफ क्राइस्ट विदाउट क्राइस्ट बना देता है। और हेजल जैसे दिखने वाले एक दूसरे आदमी सोलेस लेफील्ड को नौकरी पर रख लेता है प्रचार करने के लिए।
ये तो आस्था को पूरी तरह खोखला करके बेचने की कोशिश हुई।
हाँ, बिल्कुल वही।
और हेजल इस पर क्या करता है?
हेजल गुस्से में आकर अपने उस हमशक्ल सोलेस लेफील्ड को अपनी कार से कुचल कर मार डालता है।
मार डालता है।
हाँ, ये जैसे उसके अपने संदेश के इस बिगड़े हुए बिकाऊ रूप को ठुकराना है, और पाखंड के खिलाफ उसका एक हिंसक फैसला। ये उसकी खुद की भयंकर तपस्या की तरफ एक और कदम है।
इन सब उलझे हुई किरदारों और घटनाओं को समझने के लिए कहानी के मुख्य पड़ावों को एक बार फिर से देखना शायद अच्छा रहेगा। इससे हेजल की पूरी यात्रा और साफ हो जाएगी।
हाँ, ये अच्छा रहेगा। कहानी करीब 14 अध्यायों में फैली है।
तो शुरुआत होती है हेजल के टॉल्किनहैमाने से।
हाँ, अध्याय 1 से 3 में ट्रेन यात्रा, टॉल्किनहैम आगमन, अपनी धार्मिक पहचान से इनकार, आसा हॉक्स और सैबिथ से मिलता है, और यहीं वो अपने चर्च विदाउट क्राइस्ट का ऐलान करता है।
फिर अध्याय 4 से 6 में
वो अपनी एसेक्स कार खरीदता है, जो उसकी आज़ादी और चर्च का निशान बनती है। इनोक एमरी से मिलता है, जो उसे म्यूजियम की मम्मी के बारे में बताता है और उससे जुड़ने की बेकार कोशिश करता है।
इसके बाद टकराव बढ़ता है।
हाँ, अध्याय 7 से 9 में हेजल कार के बॉनेट से प्रचार शुरू करता है। हूवर शॉर्ट्स दखल देता है और हेजल के मना करने पर हमशक्ल सोलेस लीफील्ड को खड़ा कर देता है। सैम्बेथ उसे लुभाने में लगी है।
और फिर क्लाइमैक्स,
अध्याय 10 से 12, हेजल का गुस्सा बढ़ता है। उसे पता चलता है कि आसा हॉक्स अंधा होने का नाटक करता है, ये जानकर उसे गहरा धक्का लगता है, और फिर वो अपने हमशक्ल सोलेस लीफील्ड की हत्या कर देता है।
और अंत के 2 अध्याय,
अध्याय 13 और 14, हत्या के बाद हेजल खुद को चूने से अंधा कर लेता है, एक भयानक प्रायश्चित। पुलिस उसकी कार नष्ट कर देती है, वो तपस्वी बन जाता है, कंटीले तार, जूते में पत्थर। उसकी मकान मालकिन मिसेस फ्लड उससे अजीब तरह से आकर्षित होती है, पर उसे समझ नहीं पाती। आखिर में हेजल एक तूफान में भटकता है और पुलिस उसे अधमरी हालत में पाती है, गाड़ी में ही उसकी मौत हो जाती है।
ये घटनाक्रम ओ'कॉनर के मुख्य विचारों को एकदम साफ कर देता है, जैसे ये कि आस्था से भागना लगभग नामुमकिन है। हेजल की पूरी कहानी यही दिखाती है।
तारों के केंद्र में रहता है ओ'कॉनर, जैसे कह रही हो कि ईश्वर से नफरत भी एक तरह का गहरा रिश्ता ही है।
हाँ, और वो आध्यात्मिक अंधेपन बनाम शारीरिक नजर का मुद्दा भी कितना गहरा है। आसा हॉक्स का झूठा अंधापन,
वो आध्यात्मिक बेईमानी है
जबकि हेजल का खुद को अंधा करना एक भयानक लेकिन शायद रूहानी तौर पर सच्चा कदम बन जाता है।
जैसे सच्ची रूहानी नजर के लिए दुनियावी नजर कुर्बान करनी पड़े।
सही कहा।
और आज के जमाने में धर्म के नाम पर होने वाले धंधे और भ्रष्टाचार का मुद्दा हूवर शॉट्स के जरिए ओकॉनर दिखाती हैं कि कैसे एक ऐसी दुनिया में सच्ची रूहानी खोज कितनी मुश्किल हो गई है जहां हर चीज बिकाऊ है, आस्था भी।
और हाँ, ओकॉनर का वो खास विचार कृपा की हिंसा, ग्रेस थ्रू वायलेंस, मतलब ईश्वर की कृपा या सच्चाई का एहसास कभी कभी बड़े झटके या तकलीफ के साथ आता है।
हेजल का सफर कोई आरामदेह ज्ञान प्राप्ति नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि दर्दनाक नुकसान, शारीरिक पीड़ा और खुद को मिटाने के रास्ते से गुजरता है। ओकॉनर शायद मानती थी कि इंसान अपनी गलतफहमियों और पापों में इतना डूबा होता है कि उसे जगाने के लिए अक्सर एक जोर का झटका जरूरी होता है।
पहचान और असलियत का सवाल भी उठता है। हेजल अपनी पहचान अपने धार्मिक अतीत के विरोध में बनाने की कोशिश करता है, जिससे वो और ज्यादा भड़क जाता है।
हाँ, कहानी शायद ये कहती है कि असली पहचान शायद उन सब चीजों को कबूल करने में है जिन्होंने हमें बनाया है, चाहे वो कितनी भी दर्दनाक क्यों ना हो, उनसे भागने में नहीं।
और आखिर में वो विभत्सता में रहस्य उद्घाटन वाली बात, ग्रोटेस्क एज रेवलेशन। ओकॉनर जान बूझ कर ऐसे किरदार और हालात दिखाती हैं जो विचलित करने वाले हों।
हाँ, एनोक का मम्मी से लगाओ, सैबित का उसके साथ बर्ताओ, ये सब हमें आरामदेह सोच से बाहर निकालते हैं और इंसान की फितरत और रूहानी हकीकत के बारे में कड़वे सच का सामना कराते हैं।
ये विभत्स चीजें जैसे आईना बन जाती हैं हमारी अपनी आध्यात्मिक कमियों का।
बिल्कुल।
ओकॉनर का लिखने का अंदाज भी उतना ही निराला है।
हाँ,
वो कहानी किसी तीसरे व्यक्ति के नजरिए से सुनाती हैं।
हाँ, जिससे हमें किरदारों के मन की बातें भी पता चलती हैं और उनके धोखे पर एक तरह की व्यंग्यात्मक दूरी भी बनी रहती है। भाषा सीधी सपाट लेकिन बहुत असरदार।
और प्रतीकों का इस्तेमाल तो कमाल का है। वो एसेक्स कलर,
आजादी, भागने की कोशिश, हेजल का चर्च, सब कुछ, अंधापन, रूहानी नजर का उल्टा रिश्ता, म्यूजियम की वो मम्मी, आज की दुनिया की बेजान मूर्ति पूजा और एनोक का गुरिल्ला सूट, इंसानियत से गिरकर जानवर बन जाना, हर चीज का गहरा मतलब है।
व्यंग्य और एक अजीब बेचैन करने वाला हास्य पूरी कहानी में फैला हुआ है। सबसे बड़ा व्यंग्य तो ये है कि हेजल का मसीह विरोधी अभियान उसे आखिर में एक तरह की दुख झेलने वाली मसीह जैसी शख्सियत बना देता है।
हाँ, ये हास्य गुदगुदाता नहीं, असहज करता है, क्योंकि ये किरदारों की बड़ी बड़ी बातों और उनकी दयनीय हरकतों के बीच के फासले को दिखाता है।
कुछ डायलॉग्स तो दिमाग में अटक जाते हैं, जैसे हेजल का वो ऐलान, मैं बिना मसीह वाले चर्च का प्रचार करता हूँ,
जहाँ अंधे देखते नहीं, लंगड़े चलते नहीं और जो मर गया वो मरा ही रहता है,
या उसका ये मानना कि जिसके पास अच्छी कार हो उसे किसी उद्धार की जरूरत नहीं,
या उसका ये मानना कि जिसके पास अच्छी कार हो उसे किसी उद्धार की जरूरत नहीं,
या एनोक का अपने वाइज ब्लड पर यकीन।
ये बातें उनके भ्रम और उनकी हताशा दोनों को दिखाती हैं।
अगर पढ़ने वाले पर इसके असर की बात करें तो ये उपन्यास सुकून देने वाला तो बिल्कुल नहीं है। ये बेचैन करता है, हिला देता है।
हाँ,
ये आस्था, ईमानदारी, पाखंड और हमारी अपनी रूहानी हालत पर मुश्किल सवाल खड़े करता है। किरदार भले ही अजीब लगें, कभी कभी घिनौने भी, पर उनकी छटपटाहट में कहीं ना कहीं एक दर्द भरी इंसानियत दिखती है जिससे जुड़ाव महसूस होता है।
हाँ, और जो बात मन में रह जाती है वो ये कि शायद पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष, मतलब बिना किसी गहरे आध्यात्मिक जुड़ाव या संघर्ष के जीना मुमकिन ही नहीं है। कम से कम ओकॉनर की दुनिया में तो ऐसा ही लगता है।
धर्म के नाम पर धोखा और उसका बाजारीकरण आज भी कितना सच लगता है।
बिल्कुल। और ये विचार कि असली रूहानी बदलाव अक्सर हिंसक और दर्दनाक होता है हमें सोचने पर मजबूर करता है। वो अजीब और टूटे हुए किरदार जैसे हमें हमारा ही आईना दिखाते हैं।
सच में ये उपन्यास आस्था और अनास्था के बीच एक जबरदस्त हिंसक कश्मकश की यादगार तस्वीर पेश करता है। ये दिखाता है कि कैसे कभी कभी इनकार भी जुड़ाव का ही एक गहरा जुनून भरा रूप होता है।
हाँ, हेजल मोड्स की कहानी हमें याद दिलाती है कि ईश्वर से भागना भी कहीं ना कहीं ईश्वर के ही इर्द गिर्द घूमना है,
और ये भी कि सच की तलाश अक्सर एक मुश्किल, दर्दनाक और विरोधाभासों से भरी यात्रा होती है, आसान जवाबों से बहुत आगे।
इस सफर में इंसान को शायद अपनी सबसे गहरी मान्यताओं और अपनी पहचान की जड़ों का सामना करना पड़ता है।
अनिवार्य क्लोजिंग लाइन। ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।